जय धवला, पुस्तक 12वी, लेक्चर नंबर 5। ओ
नमः शिवाय,
ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आययाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। जयते केवलदंतन नाणुवजोगे हि जुगवद्युजुत्ता, ते केवलिनोपणमिय वोच्छं उवजोगमणियोगम्। यह श्री भीमसेन आचार्य की जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर्म तारक प्रसाद यति सब आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 12वीं पुस्तक जो उपयोग नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 58 पर आ गए। 57 से शुरू करेंगे। वह क्या विषय चल रहा है यहाँ? तो सन्निकर्ष की बात चल रही थी, या संख्यात उपयोग वाले बहुत ज्यादा है। सन्निकर्ष की बात तो हो गई थी, उसके बाद संख्यात उपयोग वाले बहुत ज्यादा है कि असंख्यात उपयोग वाले बहुत ज्यादा है, उसकी बात चल रही थी। वो तो बात छोड़ो, परंतु लोभ के संख्यात असंख्यात में, क्रोध के संख्यात असंख्यात आदि में अल्प बहुत पर चल रहा है। तो उसमें ये बात आई थी कि असंख्यात उपयोग वाले भाव लोभ के जो है वो सबसे थोड़े हैं, लोभ के असंख्यात उपयोग वाले भाव सबसे कम है। ये 8 में अल्पभूतव करना था ना, तो ये पहला नंबर है। उसके बाद हमने 55 पेज पर देखा माया के असंख्यात उपयोग वाले भाव, उसके असंख्यात गुण हैं। उसके बाद मान कषाय के असंख्यात वे असंख्यात उपयोग वाले भाव, वे उनसे भी असंख्यात गुण हैं। उसके बाद क्रोध कषाय के असंख्यात उपयोग वाले भाव, वे असंख्यात गुण हैं। तो ये तो 4 में अल्प बहुत हो गया, पहले में पहले 8 में लगाना था। लोभ के असंख्यात उपयोग वाले, फिर माया के असंख्यात उपयोग वाले, फिर मान के असंख्यात उपयोग वाले, फिर क्रोध के असंख्यात उपयोग वाले भाव, उसकी बात चली। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्रोध कषाय के संख्यात उपयोग वाले भाव है, वे उनसे असंख्यात गुण हैं। तो यहाँ तो हमने जो बिंदियाँ देखी थी, एक एक समय से बढ़ते हुए भावों की अगर बात करेंगे तो संख्यात उपयोग वाले भाव कम हैं, और असंख्यात उपयोग वाले यानी जिस भाव में गगन युक्ता संख्यात प्रमाण उपयोग हो जाते, उसके आगे के एक एक समय से बढ़ते हुए 33 सागर तक के भाव, उनकी संख्या ज़्यादा है। परंतु यहाँ बात अतीत काल में कितने हो चुके उसकी बात चल रही है। तो छोटी आयु वाले भाव असंख्यात गुणे हो गए, उसके लिए हमने एक कारण देखा था। जब 10,000 वर्ष के आयु वाले असंख्यात भव हो जाते हैं, तो एक बार 10,000 वर्ष प्लस एक समय वाली आयु वाला भव होता है, फिर दोबारा वो उतने असंख्यात हो जाने पर दूसरी बार 10,000 वर्ष प्लस एक समय, फिर 10,000 वाले असंख्यात हो जाए, बीच में लगातार तो होते नहीं, जब कभी हो गए तब जाके तीसरी बार 10,000 वर्ष और 2-3 समय की बात हो गई। पहले एक समय, 2 समय, फिर 3 समय, एक समय वाला है तीसरी बार 10,000 वर्ष और एक समय पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, हर एक बार के बीच में 10,000 वर्ष के असंख्यात वो हो जाए। जैसे 10,000 और 10,001 के लिए कथन किया है, वैसा ही कथन 10,000 वर्ष प्लस एक समय से लेकर दो समय तक, यानी 10,000 वर्ष और एक समय वाले असंख्यात भव हो जाएंगे, तब जाके 10,000 वर्ष और दो समय वाला एक भव होगा। ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, इसे हर एक आगे आगे के एक एक समय बढ़ते हुए तो पहले पहले वाले असंख्यात होने चाहिए। भव परिवर्तन नहीं, उसमें तो एक एक ही बार लेना है, एक ही बार लेना है, परंतु उसके लिए बीच में इतना काल जाएगा, ये बात ख्याल में रखनी चाहिए। हाँ, बीच में काल बहुत ज्यादा जाएगा, यानी 10,000 वर्ष के दोबारा आयु प्राप्त होने के लिए कम काल लगेगा, काल गिनना है, बहुत नहीं गिनने थे हमको, एक एक विशिष्ट आयु वाला एक एक ही भव गिनना था वहां पर अनुक्रम से। ऑफकोर्स आगे आगे वाला भव प्राप्त होने के लिए बीच में बहुत लंबा काल जाएगा, और वहां तो भव परिवर्तन हमने क्रम से लेना है, यहाँ तो अक्रम से तो हो सकता है कभी भी कुछ भी। वही तो, यानी वहां वो भव ज्यादा होते हैं, यही बात कहें। यहाँ पर संख्यात उपयोग वाले भव असंख्यात गुणे क्यों कहे? हाँ हाँ, हम जब हम भव परावर्तन की बात करते हैं, बिल्कुल करनी है, क्योंकि वहाँ भी ये बात ख्याल में रखनी है कि आगे आगे वाली जो ऊपर ऊपर की आयु है, अधिक समयों वाली, वो कितने लंबे काल के बाद प्राप्त होगी, यानी 10,000 वर्ष के जितने समय उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु के साथ उत्पन्न हुआ, बीच में अधिक से भी उत्पन्न होगा कभी ना कभी, उसको काउंट नहीं करना था, उसको समय गिनना था, वहाँ तो क्रम से होनी चाहिए। तो आगे आगे वाले जो अधिक अधिक आयु वाले हैं, एग्जैक्ट एक समय बढ़कर वाली बात वहाँ होनी चाहिए, तो वो भी बहुत लंबे काल के बाद होगी, ये बात बताएं। पाप करने वाले कम है ऐसी बात नहीं है, फिर भी थोड़ा पाप करने वाले से ज्यादा पाप करने वाले कम है। जैसे नीचे के स्वर्गों में भी ऐसा लेना ना, ऑर्डिनरी पुण्य करने वाले तो
बहुत है।
हाँ, भवन अतिरिक्त ज्योतिषी में जाएंगे, ज्योतिषी में तो मैक्सिमम संख्या है। हाँ, तो ये हम देख रहे थे 57 पृष्ठ पर जो शंका समाधान है उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे हम। फिर देखो, यहाँ शंका पूछी थी क्रोध कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव, असंख्यात उपयोग वाले भवों के असंख्यात विभाग प्रमाणे, उन भवों की संख्या गिनेंगे, 10,000 वर्ष वाला एक भव, 10,000 वर्ष प्लस एक समय वाला दूसरा भव, तीसरा भव, चौथा भव, ऐसे अगर उनकी टोटल संख्या देखेंगे तो आगे वाले जो भव होंगे उनके असंख्यात विभाग प्रमाणे। तो ये असंख्यात गुणा यहाँ क्यों कहा? तो क्यों कहा, तो हमें पता है कि यहाँ तो कितने भव वो प्राप्त कर चुका है, संख्यात उपयोग वाले कितने भव हुए आज तक अतीत काल में, और असंख्यात उपयोग वाले भव कितने हुए, तो उनकी संख्या अगर देखेंगे, एक जीव ने कितने भव प्राप्त किए हैं, तो संख्यात उपयोग वाले असंख्यात गुणे हो चुके। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ लिखा था समाधान में कि अधस्तन भव परिवर्तनों की अपेक्षा उपरीतन भव परिवर्तन असंख्यात गुणे हीन होते, यानी कम आयु वाले भव बहुत बार होते, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखकर क्रोध कषाय के असंख्यात उपयोग वाले भवों से संख्यात उपयोग वाले भव असंख्यात गुणे होते हैं, यह सिद्ध, यानी अतीत काल में कितने हो चुके उसकी बात है। यथा एक जीव नारकियों में उत्पन्न होता हुआ 10,000 की आयु वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, इस प्रकार उत्पन्न हुए जीव की संख्यात उपयोग वाले भव की एक शलाका हुई, यानी संख्यात उपयोग वाला उसका एक भव हुआ, फिर भी इसी विधि से 10,000 वर्ष की आयु के साथ असंख्यात बार उत्पन्न होकर, तदनंतर एक बार एक समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु वाले भव में उत्पन्न हुआ, पुनः पहले के समान 10,000 वर्ष की आयु वाले भव में असंख्यात बार उत्पन्न होकर, तदनंतर एक समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु वाले भव में दूसरी बार उत्पन्न हुआ, फिर भी इसी विधि से उत्पन्न कराने पर एक समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु वाले भव भी असंख्यात हो जाते हैं। ऐसा हो जाने पर पुनः एक बार दो समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु वाले भव में उत्पन्न हुआ, पुनः लौटकर एक समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु वाले भव में आगमानुसार असंख्यात बार उत्पन्न होकर, यह किया था कल हमने, तदनंतर दूसरी बार दो समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु वाले भव में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दो समय अधिक 10,000 वर्ष की आयु वाले भव विकल्प असंख्यात होने तक उत्पन्न कराते रहना चाहिए। वो किया था ना, वो पेंसिल से दिख नहीं रहा, असंख्यात बार
वो तो किया था ना
कल किया था। हाँ हाँ, एक एक चीज
आपने किया था ना,
पेंसिल से मेरा नहीं दिख रहा था बराबर।
अच्छा,
इस प्रकार उत्कृष्ट संख्यात उपयोग वाले भव के प्राप्त होने तक तीन समय अधिक आदि 10,000 वर्ष की आयु वाले भव में भी उत्पन्न कराते हुए ले जाना चाहिए। एक एक समय आयु का बढ़ाते हुए, परंतु जब एक समय अधिक वाली आयु बढ़ जाएगी तो पहले से पूरा ही झंझट फिर से दोबारा 10,000 वर्ष के असंख्यात बार, असंख्यात बार, फिर एक समय अधिक वाले वो जब असंख्यात हो जाएंगे तब दो समय अधिक वाले वो असंख्यात हो जाएंगे तब तीन समय अधिक वाले, यानी और एक समय बढ़ाने तो पहले से सब बढ़ाते 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 वहाँ तक ले जाना। तो कहते हैं असंख्यात बार उत्पन्न होकर पुनः एक बार जघन्य परिता संख्यात प्रमाण उपयोग वाले भव में उत्पन्न होता है, यानी वहाँ उसके असंख्यात उपयोग वाला भव शुरू हुआ यहाँ। फिर भी इसी विधि से, यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था ना, इसी विधि से पूर्वोक्त भव में असंख्यात बार उत्पन्न होकर तदनंतर दूसरी बार एक समय अधिक भव में उत्पन्न होता है, यानी ये पहला कौन सा भव लेना है, जगन्युक्ता संख्यात उपयोग वाला भव, उसमें जब असंख्यात बार होगा तब जाके और एक समय अधिक वाले भव में उत्पन्न होगा। इस प्रकार इस भव में भी असंख्यात बार उत्पन्न हुआ, यानी उसमें दो बार तीसरी बार दूसरी बार तीसरी बार उसके लिए पहले 10,000 वर्ष से लेकर फिर हर एक 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 समय बढ़ते तो पूरा ही पहले से क्रम वही बढ़ाते जाना चाहिए। जैसे हमने वो ऊ पाँच देखा था तो पूरे एक बार चट्टान होती तो उसमें ऊ सबसे मैक्सिमम बार आते हैं, उसके बाद चार तीन, उसके बाद पांच का, तो आगे आगे वाला कम बार आता है, पहले पहले वाले बहुत बार आते हैं। इस प्रकार एक समय अधिक आदि के क्रम से उपरिम असंख्यात उपयोग वाले भवों में भी निरंतर उत्पन्न कराने की विधि करके 33 सागरोपम प्रमाण अंतिम भव के प्राप्त होने तक उत्पन्न कराते हुए ले जाना चाहिए। ये तो क्रम से उत्पन्न कराने की बात है, फिर भी यहाँ ज्यादा हो जाएगी। यह एक भव परिवर्तन करके इसी प्रकार अनंत भव परिवर्तन कराने चाहिए, क्योंकि अतीत काल की मुख्यता से भव परिवर्तन तत्प्रमाण उपप्रणाम हुए, तत्प्रमाण उपलब्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ अधस्थन भव परिवर्तनों से उपरिम भव परिवर्तन असंख्यात गुणहीन हुए, इसलिए क्रोध दशाएं के असंख्यात उपयोग वाले भवों से उसी के संख्यात उपयोग वाले भव असंख्यात गुणे हैं, यह कहा। ये क्यों है, उसके लिए इतने लंबी चौड़ी उन्होंने पूरी विस्तार से बात की, यानी यहाँ से संख्यात उपयोग वाले भवों की बात चल रही है, यानी क्रोध कषाय के असंख्यात उपयोग वाले भवों से उसी क्रोध कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव असंख्यात गुणे होते हैं। आगे का सूत्र, जे संख्येत जो मानव जोगी का भवा ते भवा विशेष आया, जो मान कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव है वे भव विशेष अधिक है। छह अंक कितने, पांच नंबर तक आए थे, छह नंबर पर, टोटल आठ है ना, शंका का विशेष का प्रमाण कितना है। क्रोध कषाय के संख्यात उपयोग वाले भवों के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, अल्प बहुत करें, हम अल्प से बहु की ओर चल रहे हैं, क्योंकि क्रोध कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव से विशेष अधिक अधमान को विषय कर ये अवस्थित है। यानी उसका काल अधिक है, अधिक अधमान यानी उसका काल बड़ा है।
इसलिए तो क्रोध कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव भी असंख्यात है और उसके असंख्यात विपाक के बने।
देखो इनके संख्यात उपयोग वाले भव है विशेष अधिक है।
पर क्रोध कसाई के संख्यात उपयोग वाले भव क्रोध कसाई के असंख्यात उपयोग वाले भव से असंख्यात गुणे
वो तो हो हाँ, चुका वो कथन
हाँ, वो असंख्यात भव के असंख्यात विपाक के बने।
जो अभी यहाँ जितने भाग प्रमाण संख्यात भवों की जो संख्या है उन संख्या के असंख्यात उसके विशेष अधिक है। विशेष अधिक का प्रमाण कितना है?
असंख्यात
असंख्यात भाग ज्यादा है।
नहीं तो अतीत काल के लिए एक भव परावर्तन होते
हाँ भव तो अनंत हो गए
हाँ।
परंतु यहाँ जो असंख्यात गुणा की बात चल रही है ना तो वो जो असंख्यात गुणा हो गए हैं
उसके असंख्यात में भाग प्रमाण
हाँ, तो असंख्यात गुणा वो तो अनंत ही गिनना है।
तो अनंत
भव कितने हुए आज तक?
टोटल तो अनंत हो जाएगा
क्योंकि अनंत भव परिवर्तन हुए हैं तो उसमें संख्यात उपयोग वाले बहुत ज्यादा हुए हैं। असंख्यात गुणा हो गए हैं, असंख्यात उपयोग वाले भी अनंत हुए हैं, संख्यात उपयोग वाले भी अनंत हुए हैं, परंतु वो उससे असंख्यात गुणा अधिक हुए। अब यहाँ कहते उससे विशेष अधिक है। तो वो कितना अधिक है? तो कहते हैं कि जो संख्यात उपयोग वाले जितने होंगे उसका असंख्यात वा भाग अधिक है, क्योंकि क्रोध कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव से विशेष अधिक अधवान को विषय कर ये अवस्थित है। देखो पहले हमने जो देखा था उसका जो अभी काल की बात तो आई नहीं है, कितने उपयोग होते हैं उसकी बात दी थी, इतनी बार परिवर्तन करने पर एक अधिक होता है वगैरह, उसकी परिवर्तन की बात आई है यहाँ पर। देखो आगे का पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगी बात। ये छह तो हमने अल्पभूत को देखे थे, अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे 58 पृष्ठ पर। जे संख्येज्य मायोग जोगी का भवा ते भवा विशेषाह्या, जो माया कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव है वे भव विशेष अधिक है। संख्यात उपयोग वाले का अर्थ है अभी ये तो छोटी आयु वाले है ना, यहाँ पर भी अपना गुणकार यद्यपि संख्यात अंक प्रमाण है तो भी इनका विशेष अधिक होना विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अधस्तन भव परिवर्तनों से उपरिम भव परिवर्तन असंख्यात गुणहीन होने पर भी अपने गुणकार की वहाँ प्रधानता नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखो जब क्रोध की बात आई थी नंबर 4 और 5 पर 56 पेज पर नीचे के 2 सूत्र, क्रोध कषाय के असंख्यात उपयोग वाले भव उनसे क्रोध कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव असंख्यात गुणा था। अब ये क्रोध कषाय के उपयोग वालों से आगे की बात कंपेयर करें, इसलिए विशेष अधिक और विशेष अधिक का अपने स्वयं का गुणकार संख्यात गुणा कहा ना उन्होंने, अपना गुणकार इन्हें माया के असंख्यात उपयोग वाले भवों से माया के संख्यात उपयोग वाले भव गुणकार रूप में हो गए, फिर भी यहाँ कंपेयर किसके साथ करोगे? क्रोध के संख्यात उपयोग वाले, फिर मान के संख्यात उपयोग वाले, फिर माया के संख्यात उपयोग वाले। इसलिए कहते अपने स्वयं की बात करेंगे तो यहाँ गुणकार रूप में, परंतु यहाँ मान के संख्यात उपयोग वालों से माया के संख्यात उपयोग वाले विशेष अधिक। देखो यहाँ पर भी अपना गुणकार यद्यपि संख्यात अंक प्रमाण है तो भी इनका विशेष अधिक होना विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अधस्तन भव परिवर्तनों से उपरिम भव परिवर्तन असंख्यात गुणहीन होने पर भी अपने गुणकार की वहां प्रधानता नहीं है। वहां तो असंख्यात गुणा कहा था ना, असंख्यज गुणा, क्रोध में असंख्यज गुणा कहा था। और यहाँ संख्यात गुणा कह रहे हैं, फिर भी उसकी प्रधानता यहाँ नहीं है, ये बात बता रहे। अब आगे का सूत्र 59 पेज पर, जे संख्यज लोभो व जोगी का भवा ते भवा विशेषाया, जो लोभ कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव हैं वे भव विशेष अधिक है। मैंने माया कषाय उनके संख्यात उपयोग वाले भव, उनसे लोभ कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव विशेष अधिक है। शंका, विशेष का प्रमाण कितना है? समाधान, पहले जो विशेष का प्रमाण बतलाया है उनके असंख्यात विभाग प्रमाण है। पहले भी बताया था ना, क्रोध कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव उनके असंख्यात विभाग प्रमाण, अभी उसका भी असंख्यात भाग यहाँ ले लिया। इस प्रकार नरक गति से संबंध रखने वाले, ये नरक की बात यहाँ पर है, इन 8 पदों के अल्प बहुत्व का सकारण कथन करके अब विलोम क्रम से ने उल्टा क्रम, देवगति में भी यही अल्प बहुत्व आलाप योजित कर लेना चाहिए, इस बात का कथन करने के लिए अर्पणा सूत्र को कहते हैं। जहाँ नेरयेषु तहाँ देवेषु नवरी कोहादो आढ़वेयो, जिस प्रकार नारकियों में प्रकृत अल्प बहुत्व है उसी प्रकार देवों में है, इतना विशेष है कि देवों में क्रोध कषाय से प्रारंभ करना चाहिए। वह हमने किससे प्रारंभ किया था? लोभ से। और लोभ से कौन से भाव सबसे अल्प थे? मंजूर लोग 8 अल्पभूत्व देखा, 8 अल्पभूत्व देखे आपने थे ना, अभी अभी हमने देखी है, आपको याद है? ऐसे में 8 में पहले, हाँ पहला नंबर पर कौन सा था? असंख्यात
उपयोग
वाले भव
सबसे कम है
नारकियों में, लोभ के लिए थे सबसे कम, और यहाँ पर लेना है
क्रोध के,
और वहाँ सबसे उत्कृष्ट लोभ के असंख्यात उपयोग वाले लिए, यानी संख्यात उपयोग
वाले, संख्यात
उपयोग वाले, असंख्यात से शुरू किया था लोभ माया मान और क्रोध, फिर असंख्यात उपयोग वाले क्रोध मान माया लोभ, अब यहाँ क्रोध से शुरू करना है देवों में, पढ़ेंगे अभी हम। जिस प्रकार नारकियों में प्रकृत अल्प बहुतों का कथन किया है उसी प्रकार देवों में भी करना चाहिए, इतनी विशेषता है कि क्रोध कषाय से अल्प बहुतों का प्रारंभ करना चाहिए। क्रोध कषाय से आरंभ कर पश्चातानुपूर्वी से योजना करनी चाहिए। पश्चातानुपूर्वी कहो विलोम क्रम कहो एक ही बात है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इसी विषय के योजना क्रम को दिखलाने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। योजना है उसका एप्लीकेशन करके दिखाएंगे। तम जहाँ वह कैसे, यह सूत्र सुगम है। जे असंख्यज कोहो व जोगी का भवा ते भवा थोवा, नरक में हमने लोग के लिए पहले नंबर पर, जो क्रोध कषाय के असंख्यात उपयोग वाले भव है वे भव सबसे स्तोक है। ये अतीत काल की अपेक्षा भवों की बात चल रही है। अतीत काल में तो नारकियों के भव अनंत हो चुके हैं, परंतु यहाँ किसकी बात है? क्रोध कषाय के असंख्यात उपयोग वाले भव कितने किए? तो सबसे थोड़े किए, अभी यहाँ तो देवों में बात चल रही। जे असंख्येज मानव योगी का भवा ते भवा असंख्येज गुणा। जो मान कषाय के असंख्यात उपयोग वाले भव है वे भव असंख्यात गुणे हैं। किससे असंख्यात गुणे? क्रोध कषाय के जितने हुए थे उससे असंख्यात गुणे। जे असंख्येज मायोग योगी का भवा ते भवा असंख्येज गुणा। जो माया कषाय के असंख्यात उपयोग वाले भव है वे भव असंख्यात गुणे हैं। जे असंख्येज लोभो योगी का भवा ते भवा असंख्येज गुणा। जो लोभ कषाय के असंख्यात उपयोग वाले भव है वे भव असंख्यात गुणे हैं। इसमें क्रोध मान माया लोभ। अब नंबर किसका आएगा? लोभ का। उल्टे क्रम से लोभ के संख्यात उपयोग वाले भव। जे संख्येज लोभो योगी का भवा ते भवा असंख्येज गुणा। जो लोभ कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव है वे भव असंख्यात गुणे हैं। अभी इसकी हमने लंबी चौड़ी चर्चा की थी, कल भी की थी आज भी। जे संख्येज मायोग योगी का भवा ते भवा विशेष आएगा। जो माया कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव है वे भव विशेष अधिक है। जे संख्येज मानव योगी का भवा ते भवा विशेष आएगा। जो मान कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव है वे भव दे भव हुआ है, वे भव विशेष अधिक हैं। सात नंबर। जे संख्येज क्रोधव योगी का भवा ते भवा विशेष आएगा। जो क्रोध कषाय के संख्यात उपयोग वाले भव है वे भव विशेष अधिक हैं। सुगम होने से यहाँ पर कुछ वक्तव्य नहीं है। इतनी विशेषता है, भव परिवर्तन का कथन करने पर 10,000 वर्ष से लेकर एक समय अधिक आदि के क्रम से 21 सागरोपम भव तक ले जाना चाहिए। मंजू बेन बताओ आप, यहाँ 21 सागरोपम तक क्यों लिया? हाँ तो क्या हुआ, कब बोले मिथ्या? हाँ उन्हीं के परिवर्तन होते बहुत अच्छा, क्योंकि जो एक बार भी समय को प्राप्त करता है तो उसका वो परिवर्तन एक भी पूरा नहीं होगा। यहाँ तिर्यंच गति और मनुष्य गति में प्रकृत अल्प बहुत्व प्ररूपणा संभव नहीं है, क्योंकि उनमें सभी कषायों के संख्यात उपयोग वाले और असंख्यात उपयोग वाले भवों के समान होने से प्रकृत भेद नहीं पाया जाता। क्योंकि उनमें तो क्या होता है, लोभ माया मान और क्रोध इसी ऑर्डर से है ना, और समान रूप से है। आप कहेंगे असंख्यात वर्षायुष्क वालों में तो
समान नहीं होते, तो भी
समान नहीं होते, फिर भी वो तो उतने सब में तो चलेगा ना, एक एक्स्ट्रा होगा इसका, फिर भी सब में उतने परिवर्तन तो होंगे। विधीय गाहाय अर्थ विहासा समझता। इस प्रकार दूसरी गाथा का गाथा की अर्थ विभाषा समाप्त हुई। अर्थ विभाषा ने अर्थ का विशेष स्पष्टीकरण, विभाषा विशेष कथन। यह उपसंहार वाक्य सुगम है। अब अवसर प्राप्त तीसरी सूत्र गाथा के अर्थ का व्याख्यान करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। वो जोग वगणाओ कमी कसायमी केतिया हूँ ती ती ऐसा सौवावी गाहा उत्साह सुत्तम। वो जोग वगणाओ कमी कसायमी केतिया हूँ ती, इस प्रकार यह समस्त गाथा पुच्छा सूत्र है। पूरी गाथा में ही प्रश्न पूछा है कि उपयोग वर्गणा किस कषाय में कितनी होती है। अभी उपयोग वर्गणा क्या है उसके बाद अभी हम पढ़े नहीं, अभी पढ़ेंगे। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के साथ यह समस्त ही तीसरी गाथा पुच्छा सूत्र है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, इसके द्वारा क्या पुच्छा की गई है? तो उसका समाधान, इस द्वारा ओघ और आदेश से क्रोधादि विषयक उपयोग वर्गणाओं का प्रमाण पूछा गया। कितनी होती है पूछा ना, उनका प्रमाण क्या है ये पूछ रहे हैं। वहां गाथा के पूर्वार्ध द्वारा किस कषाय में कितनी उपयोग वर्गणाएं होती है, इस प्रकार ओघ से पृच्छा निर्देश किया गया है, तथा गाथा के उत्तरार्ध द्वारा भी किस गति में कितनी वर्गणाएं होती है, इस प्रकार आदेश विषय पृच्छा निर्दिष्ट की गई, ऐसा जानना चाहिए। ओवर आदेश, आदेश यानी मार्गणाओं, क्योंकि गति मार्गणा विषय के पृच्छा निर्देश में शेष समस्त मार्गणाओं का देशामर्शक भाव से अवस्थान देखा जाता है। लक्ष्मीबेन, ये देशामर्शक क्या है? देशामर्शक भाव, हाँ थोड़ा बताया, बहुत समझना। हाँ, तासे ताकवास मराठी में कहते हैं, थोड़ी लख्यू घणु जान दो क्या,
थोड़ी लख्यू जादू जान दो।
मैंने उदाहरण के तौर पर कुछ बता दिया तो बाकी विस्तार से समझ लेना। तस्य विहासा, अब उसकी विभाषा करते हैं। क्रोधादि कषायों की उपयोग वर्गणाओं की प्रमाण विषय पृच्छा में व्यापृत हुए उस इस तीसरे गाथा सूत्र की आगे अर्थ विभाषा करते हैं। मैंने पृच्छा में व्यापृत हुआ, यानी तीसरी गाथा पूरी ही पृच्छा रूप से है। तीसरी गाथा का क्या विषय है? तो बस पृच्छा की है। पृच्छा यानी क्वेश्चन, प्रश्न, पूछना, पृच्छा से वो पूछना चाहिए तैयार हो। आगे अर्थ विभाषा करते ही उक्त कथन का तात्पर्य है। तम जहा, वह कैसे, जो वह है क्या, वह है, वह कैसे, यह पृच्छा वाक्य सुकम है। ओजोग वगणाओ दुविहाओ, कालो वजोग वगणाओ, भावो वजोग वगणाओ, यह उपयोग वर्गणाएं दो प्रकार की है। देखो वर्गणा ये टर्मिनोलॉजी है, हम तो पहले शुरू शुरू में केवल वर्गणाएं स्कंद इतना ही समझते थे। तो हमने वर्गणा तो वहां भी देखा था योग में, आत्म प्रदेशों को वर्ग वर्गणा वगैरह कहा था, विशिष्ट अनुभाग से युक्त आत्म प्रदेशों को वर्ग कहा था, उनके समूह को जिनमें समान है उसको वर्गणा कहा था। यानी ये अलग अलग, जैसे हमने विभक्ति में भी देखा था ना, एक एक स्थिति से बढ़ती हुई, तो उसको भी वर्गणा कहेंगे हम, अलग अलग भेदों को कहेंगे। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं, देखेंगे उपयोग वर्गणाएं दो प्रकार की है, कालोपयोग वर्गणाएं और भावोपयोग वर्गणाएं। सुबह बीना से फोन आया था, पंडित जी वहां से, सुबोध जी, बहुत सारी बातें पूछी उनके, वो सम्यक वर्गणा का, वर्गणा का प्रकरण चल रहा है, उद्गल की वर्गणाएं ना अलग अलग, तो प्रत्येक शरीर वर्गणा में, फिर वो जघन्य में तो क्या अयोक्यवली में होती है, और उत्कृष्ट हो तो अग्निकाय के वो बड़ा धूप के घड़े वगैरह, तो उसमें एक क्षपित कर्मांशिक गुणित कर्मांशिक बातें उनकी आई है। तो क्षपित कर्मांशिक में हमने बोला उनको असंख्यात बार सम्यक तो होकर छूटता है, इतनी बार वो पांचवें गुण स्थान में जाता है, विसर्जना करता है, इतनी बार मुनि होते हैं, चार बार उत्सन से निकल के उतरे हैं, अब सूक्ष्मनि गोद में पड़े या अन्यत्र जहाँ जो कुछ पड़े हैं, प्रत्येक शरीर वर्गणा में, तो उसमें तो अग्रिकायिक में ले लेना, ठीक है, ऐसा भी होता है क्या उनसे? तो क्षपित कर्मों उसने सम्यक तो प्राप्त किया, उन्हें बोला एक बार नहीं असंख्यात बार प्राप्त किया, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, गुणित क्या होता है क्षपित? अभी उनको 10 मिनट में 15 मिनट में क्या, फिर भी 15 मिनट लिए बहुत सारे प्रश्न थे उनके। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? तो हमने बोला ये उपयोग की बात चल रही है, वो क्या होता है अभी क्या समझा रहे हैं, उन्हें दोपहर में फोन करना अभी अच्छा है उनके यहाँ स्वाध्याय चलता है बोला एक बार गए थे ना, हम जाएंगे तो अपना ये चौपट हो जाता है स्वाध्याय <नहीं। laughs> अरविंद भाई कहते अरविंद भाई देखो देखो चलो
बोलने थोड़ा समझा सकते थे
नहीं और सुबह सुबह जरा काम की होती है पूजा भी करनी है रसोई भी करना है सब चलो नहीं अच्छी रुचि है उनको यार अपने फिर वो पूछते अभी कौन से टाइम फोन करूँ तो आपको तकलीफ नहीं होगी हमें दोपहर में करना है नहीं वो भी वर्किंग है ना जॉब है इंजीनियर है हाँ आए थे वो वहाँ विट्ठल मंदिर में हुआ था उनका सुबोधी सुदीप सुदीप हाँ देखो देखो हम यहाँ उपयोग वर्गणाओं को देखेंगे दो प्रकार की है कालोपयोग वर्गणा है और भावोपयोग वर्गणा है क्रोधादि कषायों के साथ जीव के संप्रयोग करने को उपयोग कहते हैं हाँ जी उसमें
क्रोध रूप परिणाम
वो क्रोध हुआ उसको उसके संप्रयोग हुआ क्रोध उठा हम कहेंगे ना जैसे हम चारित्र गुण की अपेक्षा हम क्या कहते हैं शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग में फिर शुभोपयोग और अशुभोपयोग कहते हैं तो वहाँ उसमें क्रोधोपयोग मानोपयोग लोभोपयोग ऐसा लेना है उसमें वो वृत्ति उठी अपन यहाँ तो क्रोध की बात है ना अकेला संकलेश नहीं है संकलेश तो क्रोधमान माया लोग चारों में होता है कर्णानियों में संकलेश विशुद्धि की बात है परंतु अभी विशुद्धि में भी क्रोधमान माया लोग है और संकलेश में भी है क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि तक के ये सब क्रोधमान माया लोग चारों है और उनका वो तो चल रहा है वहाँ पर भी क्रोधादि कषायों के साथ जीव के संप्रयोग करने को उपयोग कहते हैं जुड़ना कहेंगे उनकी वर्गणाएं अर्थात विकल्प देखो देखो विकल्प की बात आई है वर्गणाएं अर्थात विकल्प भेद विकल्प कहाँ भेद कहाँ यानी उसके अलग अलग हम वर्गणा को क्या कहते हैं कुलगल की वर्गणा एक एक परमाणु से बढ़ते हुए अलग अलग भेद है उसको वर्गणा कहेंगे तो हमने जघन्य और उत्कृष्ट तक वर्गणा किया सबको नाम दिया एक जैसे आहार वर्गणा है भाषा वर्गणा है तेजो वर्गणा है तो उसका जघन्य का प्रमाण और उत्कृष्ट का प्रमाण एक एक परमाणु से बढ़ते हुए वो सारे उसके भेद बताएंगे अब यहाँ और पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगी बात शायद तो क्रोधादि कषायों के साथ जीव के संप्रयोग करने को उपयोग कहते हैं उनकी वर्गणाएं अर्थात विकल्प यानी भेद इन सब का एक अर्थ है जघन्य उपयोग स्थान से लेकर उत्कृष्ट उपयोग स्थान तक ये स्थान कहा स्थान यानी वेरिएशन जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक निरंतर अवस्थित हुए उपयोग के विकल्पों की उपयोग वर्गणा संज्ञा है जघन्य स्थान फिर उसके ऊपर का उसके ऊपर का उसके ऊपर का निरंतर कहा बीच में गैप छूटे बिना उसको निरंतर कहेंगे और उन सभी को मिलकर विकल्पों की, उपयोग के विकल्पों की, उपयोग के भेदों की, उपयोग वर्गणा संज्ञा है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्या कहना चाहते हैं फिर इसको देखते हैं। जघन्य उपयोग स्थान से लेकर उत्कृष्ट उपयोग स्थान तक निरंतर अवस्थित हुए उपयोग के विकल्पों के नाना नहीं उपयोग उपयोग ये जीव का उपयोग बदलना उसकी बात नहीं है। कितने काल तक वो क्रोध 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 को है तो थोड़ा काल अधिक काल अधिक काल अधिक काल अधिक काल, अभी यहाँ काल की अपेक्षा भी बताएंगे, भाव की अपेक्षा भी बताएंगे। अपन उपयोग के विकल्प किस प्रकार से लेना, क्रोध मान माए लोग वो नहीं है, अभी हम मान लेते हैं वो एक मिनट तक रहा के पाँच मिनट तक समझाने के लिए, तो एक मिनट और एक समय, एक मिनट और दो समय, एक मिनट और तीन समय, अभी समय समय का कर दो, ये सारे काल की अपेक्षा भेद हो जाएंगे। तो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक वो कालों की योग वर्गना करेंगे। क्रोध रूप परिणाम ना इतना ले लो जीव था। देखो देखो कि जघन्य उपयोग स्थान से लेकर उत्कृष्ट उपयोग स्थान तक निरंतर अवस्थित हुए, निरंतर भी शब्द महत्व का है, बीच में ऐसा कोई नहीं कि इतने काल तक कोई वहाँ परिणमता ऐसी भी बात नहीं है। एक 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 समय से हम अभी काल की बात करें तो निरंतर अवस्थित हुए उपयोग के विकल्पों की, उसके जो वेरिएशंस हो गए, उसके जो भेद हो गए, उपयोग वर्गणा संज्ञा है। यानी स्थानों को टोटल जो एक स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा और उत्कृष्ट तक, इन सभी को मिलकर क्या कहेंगे, उपयोग वर्गणा। वेरिएशंस है उसकी, यह उक्त कथन का तात्पर्य। वह यानी जो उपयोग वर्गणा, जघन्य भाव और उत्कृष्ट भाव दो प्रकार से संभव है। ये जो भाव की बात चल रही है, उपयोग स्थान जघन्य और उपयोग स्थान उत्कृष्ट, तो ये किस अपेक्षा से जघन्य उत्कृष्ट की बात है, तो कहते हैं कि जघन्य भाव और उत्कृष्ट भाव दो प्रकार से संभव है, काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा। उत्कृष्ट पहले जो भाव कहा वो उत्कृष्टपना, ये जघन्यपना यानी उपयोग का जघन्यपना और उपयोग का उत्कृष्टपना काल की अपेक्षा भी संभव है और भाव की अपेक्षा। भाव यानी उसको कितने अनुभाग रूप से परिणमित हुआ है उसको भाव कहेंगे, क्रोध की वहाँ कितनी इंटेंसिटी है उसको भाव में ले लेंगे। तो काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा,
या तो क्या भाव की अपेक्षा एक ही वर्गना में अलग अलग भाव हो सकते हैं निरंतर उपयोग रूप,
अभी पढ़ेंगे ना, अभी तो हमने नाम केवल पढ़ा है, उसका स्वरूप कहाँ देखा है। उनमें से काल की अपेक्षा जघन्य उपयोग काल से लेकर, अभी यहाँ उपयोग काल लिया, क्रोध रूप रहने का उत्कृष्ट काल, तो काल की अपेक्षा जघन्य उपयोग काल से लेकर उत्कृष्ट उपयोग काल तक निरंतर अवस्थित हुए विकल्पों की, ये एक जीव को एक साथ ऐसा नहीं लेना है, अन्य अन्य जीवों को कितने काल तक ये पॉसिबल है, तो ये उसके निरंतर अवस्थित हुए विकल्प है, ऐसे पॉसिबिलिटीज है, उसको कालोपयोग वर्गणा संज्ञा है। ये बात ख्याल में आती है लक्ष्मी, नाना ही जीवों की अलग अलग कभी भी जब कभी पॉसिबल है तब, जो क्रोध रूप रहने का जघन्य में जघन्य काल, किसी जीव को और एक समय ज़्यादा होगा, किसी को और एक समय, किसी को और एक समय, तो अधिक से अधिक उत्कृष्ट रूप से क्रोध रूप रहने का जो काल है, तो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक ये अलग अलग जो विकल्प है उन सब को इकट्ठा अगर हम कहेंगे तो वो क्या कहेंगे, कालोपयोग वर्गणा। वर्गणा है उसके अलग अलग भेद विकल्प, जैसे हमने वो पहले यहाँ देखा ना, वो स्थिति विभक्ति, विभक्ति कहा था उसको, विकल्प का अनुभाग की विभक्ति का, प्रदेश की विभक्ति का, यहाँ क्या रहे, ये जो उपयोग जो है क्रोध रूप रहने का कितने काल तक रहेगा, मिनिमम काल से लेकर एक एक समय बढ़ते हुए मैक्सिमम काल तक, तो एक एक समय से बढ़ते हुए सभी विकल्प लिए, इसलिए निरंतरता, क्योंकि काल विषयक उपयोग वर्गणाएं कालोपयोग वर्गणा है, ऐसा यहां ग्रहण किया है। क्या कहते हैं? काल विषयक उपयोग वर्गणाएं कालोपयोग वर्गणाएं भाव की अपेक्षा, अब भावोपयोग वर्गणा बता रहे हैं, भाव की अपेक्षा तीव्र मंद आदि भावों से परिणत हुए, परिणत की बात आई ना, यानी क्रोध से परिणत हुआ है। ये क्रोध तीव्र क्रोध है कि मंद क्रोध है? तो मंद से लेकर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जो कोई क्रोध के असंख्यात लोक प्रमाण भेद देखेंगे, अभी हम यहाँ क्या लिखा देखेंगे, परिणत हुए तथा जघन्य विकल्प से लेकर उत्कृष्ट विकल्प तक छह वृद्धि क्रम से अवस्थित हुए। ये बात आई, ये छह वृद्धि कौन सी याद है? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। तो अनंत और असंख्यात किसको समझना? ये अविभाग प्रतिच्छेद है। तो जैसे कषाय के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें जो मिनिमम वाले जो है उससे आगे वाला जो स्थान है जो किसी जीव को पाया जाएगा, क्या एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ता हुआ होगा, क्या क्या होगा? तो कही कि अनंतवा भाग अधिक, फिर अनंतवा भाग अधिक, ऐसे करते करते षट स्थान वहां पाए जाए। तो छह वृद्धि क्रम से अवस्थित हुए कषाय उदय स्थानों के, उसको कषाय के उदय स्थान कहेंगे, यानी किस अनुभाग रूप से वो उदय में आ रहा है।
ये भाव में ये निरंतर नहीं होगा,
आप हमेशा एक जीव की अपेक्षा की बात बीच में ला रहे हैं।
नहीं, नाना जी की अपेक्षा भी वर्गना में जो भाव के वर्गना,
भाव का अर्थ है वहाँ पॉसिबिलिटी। आप निरंतर का अर्थ क्या समझ रहे हैं?
एक एक अवजा से बचे,
पर ऐसा नहीं लेना। देखो क्या कहना चाहते हैं हम, आयु के विकल्प कैसे देखते हैं? मिनिमम आयु कितनी है और अधिक से अधिक आयु कितनी है?
33 साल। एक एक समय से
तो किसी ना किसी जीव को कभी ना कभी जो एक एक समय से बढ़ते हुए सभी आयु के विकल्प है कि नहीं है? विश्व में सबको है कि नहीं वो नहीं पूछ रहे, उनको क्या कहेंगे? निरंतर। समझ में? या हम अभी बात करेंगे या हाइट की बात करेंगे, मिनिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट, एक एक मिलीमीटर से बढ़ती हुई हाइट देखेंगे हर एक की, तो किसी ना किसी के तो होगी ना उतनी, तो उसको निरंतर कहेंगे। क्या ऐसा होगा कि बीच वाले इतने जो रेंज है उसमें हो गई नहीं? जैसे फुटगल की वर्गणा में हमने क्या देखा था, एक एक परमाणु से बढ़ते हुए विकल्प देखे और उसको वर्गणा नाम दिया, पर बीच बीच में ऐसे शून्य वर्गणा है कि नहीं है? तो शून्य भी उसको भी वर्गणा कहा, परंतु फिर शून्य नाम दिया कि दे आर नॉन एग्जिस्टिंग नभ वर्गणा। वो भी प्रश्न पूछा सुबह, ये नभ क्या होता है? नभ यानी जीरो, हाँ, यानी अदर पॉसिबिलिटीज कभी ना कभी किसी न किसी जीव को होता है कि नहीं होता है उसकी बात। यदि अंतर यानी वो जो सांतर निरंतर होता है या नभो वर्गना होती है, वहाँ अंतर है बीच में, कोई है ही नहीं वहाँ पर,
उसकी अपेक्षा है।
तो यहाँ निरंतर का अर्थ क्या है? कभी ना कभी किसी न किसी जीव को ये बीच वाले इतने भेद पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज की बात है ये। हमने वो वर्ग इसमें भी देखा, प्रदेश विभक्ति में क्या देखा था, इतने इतने प्रदेशों की सत्ता है, कभी ना कभी किसी को होगी, हमेशा तो नहीं होती है, उसकी बात नहीं, अभी वर्तमान में है कि नहीं है, कभी ना कभी किसी न किसी जीव को है कि नहीं है वो बात है। हाँ, ये पॉसिबिलिटीज में बीच में कोई निरंतर रहने वाले का अर्थ क्या है? हमेशा वो पाए जाते हैं वो बात नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज है। ये जैसे नरक में कितने एक एक समय से बढ़ती हुई आयु छुपाई जाती है, तो 32 सागर से 33 सागर तक की जो एक एक समय से बढ़ते हुए जो आयु है, तो एक सागर में कितने समय होगी? तो इतने शब्द नारकी होगी कि नहीं होगी वहाँ पर? वही तो बात, फिर भी हम निरंतर कहेंगे ना आयु के विकल्प, एक एक समय से बढ़ते हुए वहाँ सभी पाए जाएंगे। किसी के जीव को हो सकता है कि वो उतनी आयु लाख जीवों को है, और एक समय में बीच वाले से किसी को नहीं हो, ये भी पॉसिबल, परंतु आयु आयु के वे विकल्प है कि नहीं है, उसको निरंतर करें। देखो यहाँ क्या कहते हैं, फिर भाव की अपेक्षा तीव्र और मंद आदि भावों से परिणत हुए तथा जघन विकल्प से लेकर उत्कृष्ट विकल्प तक छह वृद्धि क्रम से अवस्थित हुए कषाय उदय स्थानों की भावोपयोग वर्गणा संज्ञा है। ये जो स्थान शब्द आता है वो वेरिएशंस के अर्थ में आता है, भेद, क्योंकि भाव विशिष्ट उपयोग वर्गणाएं भावोपयोग वर्गणाएं कहलाती है। वहां काल विषयक कहा था, यानी यहाँ जो कषाय के अविभाग प्रतिच्छेद है मिनिमम से लेकर आगे बढ़ते बढ़ते छह स्थान बुद्धि रूप से बढ़ते हुए मैक्सिमम तक जो असंख्यात लोक प्रमाण पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे, भावोपयोग वर्गना। और कालोपयोग में वो कंटिन्यूस कितने काल तक उसी कषाय रूप से है, वहाँ भाव कम अधिक हो रहे भले अंतर्मूर्त में भावों की हीनता होगी अधिकता होगी उसकी बात यहाँ नहीं है, वो तो उसके स्थान यानी वेरिएशंस में ले लेंगे एक एक समय से बढ़ते हुए वेरिएशन। और यहाँ अलग अलग भावों की अपेक्षा जो छठ स्थान बुद्धि रूप से जो अलग अलग भाव पाए जाते हैं नाना जीवन की बात। इस प्रकार दो प्रकार की उपयोग वर्गणाएं यहाँ पर अधिकृत है, यह इस सूत्र का भावार्थ है। अब वे कालोपयोग वर्गणाएं क्या है और भावोपयोग वर्गणाएं क्या है, इस प्रकार विशेष रूप से कथन, चलो बात आने वाली है, कथन करने के लिए आगे दो सूत्र आए हैं। कालों को वर्गणाएं चाहिए, वर्गणाएं, और ये हमेशा यही करते हम हैं कहते हैं वर्गणाएं, वो तो हिंदी में ऐसी पद्धति है, ये करके उसके ऊपर और एक मात्रा देते हैं ना, वो मात्रा हम नहीं देते मराठी में, वर्गणाएं कहकर उसके ऊपर चंद्र के, फिर भी उन्होंने सब जगह ऐसा रखा है, उसको हम कुछ नहीं करेक्शन करेंगे, पढ़ेंगे आगे। देखो कालोवजोग वगणाओ नाम कषायोवजोग अध्यस्थानानि, कषाय के उपयोग संबंधी अध्यास्थानों की कालोपयोग वर्गणा संज्ञा है। अध्यास्थान अध्याय ने काल, जो कषायों का उपयोग है उसकी अध्या अर्थात काल मर्यादा, वह कषायोपगाधा है, कषायोपगाधा अध्या है ना, कषाय के उपयोग का काल, उसके जघन्य और उत्कृष्ट आदि भेद रूप स्थानों को कालोपयोग वर्गणा कहते हैं, स्थान को ही वर्गणा कहेंगे, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के जो स्थान है उन सब को मिलकर उसको कालोपयोग वर्गणा कहेंगे। क्रोधादि कषायों के उपयोग संबंधी जघन्य काल को उत्कृष्ट काल में से घटाने पर जो शेष रहे उसमें एक अंक मिलाने पर कषाय संबंधी उपयोग अध्यास्थान होते हैं। ये तो आसान है ना, मान लेते उत्कृष्ट 100 है और जघन्य काल 25 है तो कितनी होगी स्थान टोटल, जघन्य 25 का है उत्कृष्ट 100 का है तो टोटल स्थान कितने हुए, 76। तो क्या किया हमने, उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस किया प्लस 1, क्योंकि हमको जघन्य को भी गिनना है और उत्कृष्ट को भी गिनना है, दोनों में डिफरेंस कितना है पूछेंगे तो 75 का, परंतु 25 को भी गिनो 26 को भी गिनो और 100 को भी गिनो तो कितने होंगे, 76 हो गए। यही बात यहाँ बताए, उत्कृष्ट काल में से जघन्य काल उसको बाद करके घटाकर एक अंक मिलाना, उनकी कालोपयोग वर्गणा संज्ञा है, यह सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। अब ये तो आसान है ना, कालोपयोग वर्गणा क्या है, जो सो कषाय उपयोग है, क्रोध की कहो या मान की कहो, विशिष्ट कषाय में कितने समय तक वो जीव लगातार है और उसमें कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज है अलग अलग जीवों के अलग अलग कालों में। तो कहते इतना ये मिनिमम है और इतना मैक्सिमम है, एक 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 समय से बढ़ते हुए सभी विकल्प वहाँ पॉसिबल है, तो उसको कहेंगे ये सभी विकल्पों की संख्या कितनी है, उन सबको मिलकर एक नाम है कालोपयोग वर्गणा, यानी उसी को स्थानों की संख्या कहेंगे। जो अलग अलग भेद है उनको स्थान कहेंगे, और एक पहला स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, सभी जघन्य से उत्कृष्ट तक के स्थान सबको मिलकर वर्गणा कहेंगे। उनके कालोपयोग वर्गणा संज्ञा सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। भावो व योग वगणाओ नाम कषायोदय स्थानानि, ऊपर कषाय के अध्या स्थानों को कालोपयोग वर्गणा का, और यहाँ कहते कषायों के उदय स्थानों की। भावोपयोग वर्गणा संज्ञा है, यानी उसको कषायों के उदय स्थान कहो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, या उसी को भावोपयोग वर्गणा कहो। एक ही बात, कषायों के उदय स्थान कषायोदय स्थान कहलाते हैं। कषायों के उदय स्थान, ये षष्ठी तत्व समास हुआ ना, ये बीच में कषाय के लगाया ना, कषायों के उदय स्थान, वो के निकाल दो तो कषायोदय स्थान एक शब्द बना दिया। उनकी भावोपयोग वर्गणा संज्ञा है, यानी कषायोदय स्थान कहो। स्थान जब कहेंगे वो अलग अलग वेरिएशन उसमें आ गए, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, पर सबको मिलकर क्या कहेंगे, भावोपयोग वर्गणा। इसका यह तात्पर्य है, क्रोधादि कषायों में से एक एक कषाय के, यानी प्रत्येक कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थान है। हाँ, ये पहले बात बताई थी ना, जिसमें हमने षट स्थान वृद्धि के स्थान देखे, वो है कितने टोटल, असंख्यात लोक प्रमाण। परंतु अभी उसमें भी अल्पभूतत्व तो है, मान में वे सबसे स्तोक है, उनसे क्रोध में विशेष अधिक है, उनसे माया में विशेष अधिक है, और उनसे लोभ में विशेष अधिक। अपने अपने कषाय संबंधी ये सब मिलकर भावोपयोग वर्गणा कहलाते हैं, क्योंकि ये तीव्र भाव और मंद भाव आदि के निमित्त से होते हैं। जीव के भावों की बात है ना, कषाय रूप परिणमित हुआ है तो तीव्र रूप है कि मंद रूप है। एदासिम दुविहाणम पि वगणानम परुवणा पमाणम अप्पा बहुवं च वत्तव्यम, इन दोनों ही प्रकार की वर्गणाओं की प्ररूपणा प्रमाण और अल्पभूतत्व कहना चाहिए। इन्हें भी यही विषय आने वाला है। अनंतर पूर्व कही गई कालोपयोग और भावोपयोग को विषय करने वाली इन दोनों ही प्रकार की वर्गणाओं का आगे प्ररूपणा आदि तीन अनुयोग द्वारों का आश्रय कर अनुगमन करना चाहिए, यानी उनको जानना चाहिए, अनुगमन करना है ने उसको फॉलो करना, तो फॉलो, अन्यथा तद विषयक सम्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी उसके बारे में ठीक तरह से सही जानकारी लेना आवश्यक है। इस प्रकार यह इस सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है, किंतु ये सुगम है इसलिए चूर्णी सूत्रकार ने इनका विस्तार नहीं किया, इसलिए इनकी पर्यायार्थिक अर्थात अलग अलग प्ररूपणा करेंगे। सर्वप्रथम उनमें से कालोपयोग वर्गणाओं की प्ररूपणा करने पर ओह और आदेश से चारों ही कषायों की कालोपयोग वर्गणाएं है बता दिया तो क्या हुआ, प्ररूपणा हो गई, यानी क्रोध की कालोपयोग वर्गणा है, मान की है, माया की है, लोभ की, प्रमाण अनुगम की अपेक्षा चारों कषाय में से एक एक कषाय की कालोपयोग वर्गणाएं अंतर्मूर्त प्रमाण होती है। यानी उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करो तो भी कितने हो गए, अंतर्मूर्त प्रमाण। अंतर्मूर्त के जितने समय है उतने ये कालों के अद्धा स्थान है, यानी इतने अलग अलग समयों के हैं, इतने समय हो गए उसमें, जितने अंतर्मूर्त में समय है उतने इनके भेद हैं। यानी विशिष्ट कषाय में रहने का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल, इनका डिफरेंस और प्लस एक समय कर दो तो वो कितना होगा, तो अंतर्मूर्त प्रमाण। समुत्कीर्तन हम कहते पैडी समुत्कीर्तनम वोच्छम है ना, अभी अपने अधिकार हो गया, पहले कर्मकांड का एक अधिकार तो हो चुका। यानी तीन है ना, प्ररूपणा प्रमाण और अल्पभूत्व। तो प्ररूपणा ने ये सभी कषायों की चारों के ही कालोपयोग वर्गणा है बता दिया, वो प्ररूपणा हुई। उसका प्रमाण कितना है, तो हर एक का अंतर्मूल प्रमाण है, अभी वो छोटा बड़ा होगा उसकी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने बता दिया था भावों में, उन्होंने अल्पभूत्व बता दिया था, यहाँ तो अल्पभूत्व फिर भी बताने वाले। तीसरा है अल्पभूत्व। अल्पभूत्व दो प्रकार का है, स्वस्थान अल्पभूत्व और परस्थान अल्पभूत्व। स्वस्थान अल्पभूत्व का प्रकरण, क्रोध की जघन्य कालोपयोग वर्गणा सबसे अल्प है। उससे उत्कृष्ट कालोपयोग वर्गणा संख्यात गुणी है, अथवा क्रोध की जघन्य कालोपयोग वर्गणा सबसे स्तोक है, उससे वर्गणा विशेष संख्यात गुणा है। वर्गणा विशेष का अर्थ है वर्गणा का डिफरेंस। देखो जैसे हमने क्या देखा था, अधिक कितना था 100 उत्कृष्ट और जघन्य 25, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 75 का, वो कितना है 25 से 3 गुना है, वो संख्यात गुणा है, डिफरेंस भी संख्यात गुणा है। और डायरेक्ट 25 से 100 कितना ही कहेंगे तो भी संख्यात गुणा कहेंगे, 25 से 100 कितने गुना है तो हम कहेंगे 4 गुना, दोनों का डिफरेंस कितना है तो 3 गुना। ख्याल में आई बात, ऐसे में कुछ विचार कर
रहे हैं। ये भावोपयोग से और काल में, ये भावोपयोग में हमने मान्य सबसे जगह ने देखा, पीछे क्रोध पीछे माया और पीछे लोक, यहाँ पे क्रोध में सघन्य है सबसे काल।
उसके स्वस्थान की बात चल रही है, कालोपयोग के जघन्य से कालोपयोग के उत्कृष्ट क्रोध का, और फिर पीछे चले गए बीच में। यहाँ क्रोध के जघन्य काल से क्रोध का उत्कृष्ट काल कितने गुना है और उनका डिफरेंस कितने गुना है, उसके लिए हमने क्या दृष्टांत दिया था अभी। देखो एक प्लस के तो उनकी टोटल संख्या आएगी, यहाँ डिफरेंस कितने गुना है
संख्या,
कैसे अपने दृष्टांत पर बताओ। हाँ वही तो, वो ऊपर क्यों पड़ रहे
थे, ऊपर करने कुछ कंफ्यूज हो रहे थे।
ये चालू हम आगे बढ़ेंगे ना तो उसके सारे के उत्तर आने वाले। 100 में से 25 माइनस किया हमने तो डिफरेंस, यानी उसको वर्गणा विशेष कहेंगे, वो भी 3 गुना है, और डायरेक्ट जघन्य से उत्कृष्ट कितने गुना है तो 4 गुना है। 25 से 100 4 गुना है और दोनों का वर्गणा विशेष यानी डिफरेंस वो 3 गुना है, यानी संख्या गुना है, यही कह रहे हैं यहाँ पर। देखो ये स्वस्थान अल्पभूत्व ने क्रोध का अपने ही जघन्य का उत्कृष्ट के साथ अल्पभूत्व देख रहे हैं, तो क्रोध की जघन्य कालोपयोग वर्गना सबसे अल्प है का अर्थ है क्रोध का जघन्य काल की अपेक्षा जो जघन्य स्थान है वो सबसे कम है। अभी स्थान कहने से पहले दूसरे कह सकते हैं, अब उसको वर्गना कहने से कितना काल है वो बात आती है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों। जघन्य स्थान को ही जघन्य कालोपयोग वर्गना, उससे उत्कृष्ट कालोपयोग वर्गना संख्यात गुणी है। यानी हमने फॉर एग्जाम्पल 25 लिया ना, जघन्य 25 और उत्कृष्ट 100, संख्यात गुणा। चार गुना हो गए,
चार गुना।
अथवा क्रोध की जघन्य कालो,
ये चार गुना हो गया ना, 25 से 100 कितना गुना हो गया, ये तो ऊपर का दिख रहा है ना हम लोग।
अथवा कहते आगे, क्रोध की जघन्य कालोपयोग वर्गणा सबसे स्टोक है, उससे वर्गणा विशेष संख्यात गुणा है।
25 से 75,
वर्गणा विशेष कितना है तो 75। क्योंकि उत्कृष्ट कालोपयोग वर्गणा में से जघन्य कालोपयोग वर्गणा के घटाने पर जो शेष रहे उसके कथन का यहाँ अवलंबन है। आपका क्या प्रश्न है जी?
नहीं,
विशेषण डिफरेंस दोनों में। तो जब उसके समय से जगह ने घटाया तो हमने एग्जाम्पल 100 और 25 का लिया है, तो घटाया तो 75 रह गए, तो उससे संख्यात गुना है, तीन गुना। उससे क्रोध की कालोपयोग वर्गणाएं विशेष अधिक है। कितनी ज्यादा है? एक से ज्यादा, क्योंकि डिफरेंस 75 का है और टोटल वर्गणा 76 है। एक मिला है ना हमने, ये अपने यहाँ नंबर फील करो तो ख्याल में आ जाएगा। उससे क्रोध की कालोपयोग वर्गणाएं विशेष अधिक, ये 76 हो गई ना। विशेष अधिक, अधिक का प्रमाण एक है, क्योंकि उत्कृष्ट में से जघन्य घटाएंगे जो आएगा वो तो वर्गणा विशेष हुआ, उसी में एक मिला दो तो टोटल वर्गणा के नंबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्गणा है। क्योंकि जघन्य कालोपयोग वर्गणाओं का भी इनमें प्रवेश देखा जाए, भी लिया पहले डिफरेंस में उसको माइनस किया था, उसको नहीं लिया था। इसी प्रकार मान माया और लोक कषाय का भी स्वस्थान अल्पबोधव करना चाहिए, ये उसका अपने अपने के साथ यही अल्पबोधव होगा कि उनका जघन्य अल्प है, उत्कृष्ट संख्यात गुणा है, या और बीच में और दो डालना है तो जघन्य अल्प है, वर्गणा विशेष संख्यात गुणा है, उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट टोटल वर्गणाएं जो है वो एक से ज्यादा है, और फिर वो उत्कृष्ट है वो तो ज्यादा है कहेंगे। अब परस्थान अल्पभूतों का कथन करने का, मान कषाय की कालोपयोग वर्गणाएं सबसे थोड़ी, उनसे क्रोध कषाय की कालोपयोग वर्गणाएं विशेष अधिक है, उनसे माया कषाय की कालोपयोग वर्गणाएं विशेष अधिक है, और उनसे लोभ कषाय की कालोपयोग वर्गणाएं विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण सर्वत्र आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। पहले हमने देखा था अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त अधिक है, फिर भी उसका प्रमाण आवली का असंख्यात भाव। अब यहाँ वर्गनाएं विशेष अधिक है, यानी इतने समय वाले अलग अलग विकल्प अलग अलग स्थान यहाँ अधिक है, ये बात कहना चाहते हैं। इस प्रकार यह ओघ से परस्थान अल्पभूत प्ररूपणा की, पिर्यंच और मनुष्य गति में भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए, क्योंकि ओघ से इनमें उक्त अल्पभूतों की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। यानी ये जो अल्पभूत कहा है वो मनुष्य पिर्यंचों की अपेक्षा कहते हैं, तो उनमें कैसे कैसे पलटना होता है, ऑर्डर क्या है, पहले में पहले कौन सा कषाय है, मनुष्य तीनों से
नहीं नहीं नहीं
लोभ माया
लोभ माया मान
मान और हमने देखा ना उसमें परिवर्तन होते हैं, परंतु यहाँ उसमें लोभ में कालोपयोग वर्गना करते हैं, जगन्य से उत्कृष्ट तक के जो भेद है काल के वो अधिक है, यानी हमेशा उसमें ज्यादा रहता है ऐसा ही नहीं, उसका जगन्य काल से लेकर उत्कृष्ट काल के भेद मैक्सिमम है, सबसे मिनिमम
लोभ
मान के है। अभी पढ़ा
अच्छा, यहाँ पे काल में
काल वर्गनाएं किसकी कम है, तो मान की सबसे कम है, उस एक एक स्थान एक एक वर्ग और सब मिलकर वर्गनाएं कहीं। अब ये तो ओह की अपेक्षा बात है। आदेश से नारकियों में लोभ कषाय की कालोपयोग वर्गनाएं सबसे स्तोक है, वहां तो क्रोधमान 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 ही अधिकतर है ना, पलटना भी उसी में चलता है। उनसे माया कषाय की कालोपयोग वर्गनाएं संख्यात गुणी है, उनसे मान कषाय की कालोपयोग वर्गनाएं संख्यात गुणी है।
यह तो संख्यात गुणी भी है
हाँ, और उनसे क्रोध कषाय की कालोपयोग वर्गनाएं संख्यात गुणी है। पहले हमने विशेष अधिक देखा था और यहाँ संख्यात गुणा था। इसी प्रकार देवगति में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, क्रोध से आरंभ कर पश्चातानुकूली से जानना चाहिए, यानी क्रोध कषाय की कालोपयोग वर्गणाएं सबसे स्तोक है, फिर मान की, फिर माया की और फिर लोभ। अब भावोपयोग वर्गणाओं का कथन करना, चारों ही कषायों की भावोपयोग वर्गणाएं है, ये क्या हो गई, प्ररूपणा हो गई है, बस बस है इतना कह देना। प्रमाण का कथन करते हैं, चारों ही कषायों में से प्रत्येक की असंख्यात लोक प्रमाण भावोपयोग वर्गणाएं होती है। ये प्ररूपणा के बाद प्रमाण हुआ, अपना अपना प्रमाण कितना है, असंख्यात लोक। अभी भावोपयोग वर्गणा चल रही है, नीचे का पैराग्राफ। तो चारों ही कषायों की भावोपयोग वर्गणा है कह देना प्ररूपणा हुई। प्रमाण में सबकी अपनी अपनी असंख्यात लोक प्रमाण भावोपयोग वर्गणा है, ये उनका प्रमाण हो गया। अब अल्पभूत्व कहेंगे, स्वस्थान और परस्थान के भेद से अल्पभूत्व दो प्रकार का, स्वस्थान का प्रकरण है, क्रोध कषाय की जघन्य भावोपयोग वर्गणा सबसे स्तोक है, क्योंकि सबसे जघन्य एक ही कषाय उदय स्थान का ग्रहण है, उससे वर्गणा विशेष असंख्यात गुणा है, गुणकार क्या है तो असंख्यात लोक प्रमाण है। हमने देखा ना असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग भेद है, तो कितने गुना हो गए वो, असंख्यात गुना करके।
यहाँ पे क्या डिफरेंस है जो हमने जो आगे पे के तो 62 पेज में लास्ट में लिखा था और ये जो 63 पेज में फर्स्ट लाइन में लिखा था मान में वे सबसे तोपे, वहाँ पे भी भावोपयोग की बात है, भावोपयोग वर्णा की बात है।
कहाँ पर 63 में?
हाँ 63 के पहले रन में मान में वे सबसे तोपे और यहाँ पे क्रोध में सबसे तोपे एक स्थान की अपेक्षा।
वहाँ कालोपयोग वर्णा की बात चल रही है?
नहीं वहाँ पे भावोपयोग की बात।
कहाँ पर? 63 पेज पर
129.3।
हाँ हाँ
129.129
पर कषाय के उदय स्थानों को भावोपयोग वर्गणा कहते हैं, बराबर। एक एक कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थान है। आगे
उनकी भावोपयोग वर्गणा संज्ञा है। इसका यह तात्पर्य है कि क्रोधादि कषायों में से एक एक कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थान है,
वही यहाँ पर भी बात की।
परंतु मानने में सबसे शोक है
वो परस्थान चल रहा है, अभी हम स्वस्थान देख रहे हैं।
अच्छा ये स्वस्थान की बात
देखो क्या कहा, स्वस्थान परस्थान के भेद से अल्पबोध तो पता है। 64 पेज स्वस्थान का प्रकरण है, अब हम परस्थान में गए ही नहीं है। क्रोध कषाय के जघन्य भावोपयोग वर्गणा सबसे स्तोक है, क्रोध की जघन्य छोटी है और उसकी उत्कृष्ट असंख्यात गुना है, ये बात बताना चाहते क्योंकि सबसे जघन्य एक ही कषाय उदय स्थान का ग्रहण किया, वो एक कषाय उदय स्थान है, उससे वर्गणा विशेष असंख्यात गुना है। वर्गणा विशेष उत्कृष्ट माइनस जघन्य, क्योंकि टोटल नंबर ही असंख्यात है तो असंख्यात लोक गुना है, उससे वर्गणाएं विशेष अधिक है। अब ये वर्गणाएं कहाँ और वहाँ वर्गणा विशेष कहाँ, कहना बिन कुछ डिफरेंस ख्याल में, वर्गणा विशेष यानी उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करो और वर्गणा यानी टोटल नंबर ऑफ वर्गणा है प्लस वन, क्योंकि जघन्य वर्गणा का भी इसमें अंतर्भाव देखा जाता है। इसी प्रकार मानादि कषायों की अपेक्षा भी उक्त अल्पबोधत्व कहना चाहिए, यानी हर एक में क्या होगा अपना अपना जघन्य सबसे तो कहे, क्योंकि वहाँ एक उदय स्थान दिया, वर्गणा विशेष असंख्यात गुना है और टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं एक अधिक है। अब परस्थान असंख्यात लोग तो नंबर ऑफ वर्गणाएं होगी और असंख्यात लोक है क्योंकि उतने स्थान है बीच में। वो अनुभाग नहीं आएगा, वो तो असंख्यात लोक बार तो अनंत गुना हो जाता है अनुभाग, वो तो भाव भाव कितना है तो भावों में तो हम अविभाग प्रतिच्छेदों को लेंगे, परंतु उत्कृष्ट भाव और जघन्य भाव उसको वर्गणा जो कहा है तो ये सबसे जघन्य वो सब एक है, सबसे जघन्य एक है। वर्गणा विशेषण उत्कृष्ट जघन्य में कितने और अन्य अन्य वर्गणाएं हैं असंख्यात है
और उसका गुणाकार असंख्यात लोक
प्रमाण, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है ना वहाँ पर, यहाँ स्थानों की संख्या बताना है। वे स्थान कैसे है तो तत्स्थान वृद्धि रूप के स्थान है, उसमें अगर उसका अनुभाग देखेंगे तो अनंत गुना असंख्यात लोक बार अनंत गुना हो गया है। वर्गणा है वो स्थान, स्थान को ही वर्गणा था। जघन्य स्थान कितने हैं तो एक है, उत्कृष्ट स्थान भी एक है, बीच में टोटल डिफरेंस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्गणाएं कितनी है तो असंख्यात है, इसलिए उसको असंख्यात गुना कहा और उसमें जघन्य को भी मिला देना और एक बढ़ा देना तो एक अधिक है, विशेष अधिक है। वो कितना भाव है उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे, इसमें अनुभाग कितना है वो नहीं, वो स्थान नंबर ऑफ स्थान की बात कर रहे। परस्थान अल्पभूतों का प्रकरण, ये जो परस्थान की बात आपने पहले पीछे पढ़ी थी, मान कषाय के कषाय उदय स्थान सबसे सूक्ष्म, अब तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। ये पहले हमने ये पढ़ा था 63 पेज पर, उनसे क्रोध कषाय के कषाय उदय स्थान विशेष अधिक है। कषाय उदय स्थान को ही यहाँ भावोपयोग वर्गना का है। उनसे माया कषाय के कषाय उदय स्थान विशेष अधिक है, यहाँ नंबर ऑफ स्थानों की बात है। और उनसे लोग कषाय के कषाय उदय स्थान विशेष अधिक है, इसका अनुभव कितने उसकी चर्चा नहीं है यहाँ, नंबर ऑफ स्थानों की बात है। विशेष का प्रमाण सर्वत्र असंख्यात लोक प्रमाण है, डिफरेंस भी इतना है। यह ओग से भावोपयोग वर्गणाओं के दो प्रकार के अल्पबोध की प्ररूपणा की। आगे चारों गतियों से संबंध रखने वाली आदेश प्ररूपणा भी इसी प्रकार जाननी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त प्ररूपणा से इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने ओग में देखा है वैसे आदेश में भी देख लेंगे। तदो तदियाय गाहाय विहासा समत्ता, इस प्रकार तीसरी गाथा की अर्थ विधासा समाप्त हुई। प्रकृत अर्थ का उपसंहार करने वाला यह वचन सुगम है, इस प्रकार इसको समाप्त कर अब चौथी गाथा के अवसर प्राप्त अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। चौथी गाहाय विहासा, अब चौथी गाथा की अर्थ विभाषा अभिकृत है, आगे चौथी गाथा की अर्थ विभाषा अधिकार प्राप्त है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। वह चौथी गाथा कौन सी है, इस प्रकार शिष्यों के अभिप्राय को मन में सोचकर उसका निर्देश करने के लिए कहते हैं। पहले तो गाथाएं तो उन्होंने विस्तार से बताई थी, अब केवल चौथी गाथा कहने से तो कुछ याद नहीं आएगा, इसलिए दोबारा यहाँ बता रहे हैं। एकम में जो अनुभागे एक कसायम में एक कालेन उवजुत्ता काच गदी विसरिसम उवजुज्जते काच ती, एक कषाय संबंधी एक अनुभाग में एक काल में कौन सी गति उपयुक्त होती है तथा कौन सी गति विसदृश रूप से उपयुक्त होती है। एक कषाय का जो एक अनुभाग है, एक काल में कौन सी गति वहाँ होगी,
क्या तो ये विस्तृत रूप से बताया है वो क्या?
हाँ, यानी वो अलग अलग
एक अनुभाग अलग अलग गति में अलग अलग रूप से। हाँ, एक ही अनुभाग की बात है ना, एक अनुभाग में
एक अनुभाग ने एक कषाय में ले लो ना, क्रोध में।
हाँ, क्रोध के एक अनुभाग में एक गति में,
क्रोध में पहले हमने पढ़ा था क्रोध को ही अनुभाग कहा था, यानी सभी नारकी एक काल में किस कषाय रूप से हो सकते हैं ये पूछा था। अभी हमने पढ़ा कहा है, अभी तो शुरुआत हो गई है, अभी पढ़ने दो ना पूरा, इसका अर्थ ही हम पढ़ने जा रहे हैं। अनुभाग का क्या अर्थ लेना है, इसमें एक गति उपयुक्त होती है उसका अर्थ क्या लेना है, ये तो अभी पढ़ेंगे हम। अभी तो यहाँ इंट्रोडक्शन है कि विषय क्या आने वाला है, जब विषय को पढ़ेंगे बाद में आप प्रश्न पूछना जरूर। देखो, एक कषाय संबंधी एक अनुभाग में एक काल में कौन सी गति उपयुक्त होती है, ये हमने पहले चौथी गाथा पढ़ी थी तब निकाल के देखो।
नो, यहाँ पे है ना नीचे है।
हाँ, तो अभी अभी पढ़ेंगे तभी मिलेगा ना वो आपको, जो पढ़ा है उसको निकालो। तो भी अप्रवाहमान प्रवाहमान दोनों भी। देखो नीचे से चौथी लाइन, किस गति में क्रोधादि कषाय में से किसी एक कषाय में ही एक समय में उपयुक्त हुए सब जीव पाए जाते हैं, है ना। बात ये आई थी पहले, अब यहाँ हम थोड़ा पढ़ेंगे ना ये तो सब, क्योंकि यहाँ तो विस्तार से बात आने वाली है। पहले हमने मात्र गाथा पढ़ी थी और उसका एग्जैक्ट भाषांतर देखा, अब यहाँ तो विभाषा तो अब करने वाले। ये 66 पृष्ठ पर हम देखे, यह वह चौथी गाथा है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। गाथा सूत्र के स्वरूप का उदाहरण करने के प्रयोजन से यहाँ इदि शब्द आया है। यह गाथा पृच्छा मुख से समस्त प्रकृत अर्थ का संग्रह कर कथन करती है, इसलिए यह पृच्छा सूत्र है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं कि एदम सवम पृच्छा सूत्रम, यह सब पृच्छा सूत्र, पूरी गाथा ही पृच्छा सूत्र ये कहते हैं। अपने पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ध के ऊपर अपार सहित यानी दोनों लाइन अनंतर पूर्व कहा गया यह समस्त गाथा सूत्र पृच्छा सूत्र है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। एथ विहासाए दोन्नी वो ऐसा, इस गाथा की अर्थ विभाषा में दो उपदेश पाए जाते हैं। पहले हमने देखा था ना प्रवाह्यमान अप्रवाह्यमान, एथ अर्थात इस गाथा सूत्र का व्याख्यान करते समय दो उपदेशों का अवलंबन लेना चाहिए। क्योंकि परम गुरु संप्रदाय का त्याग किए बिना ही व्याख्यान की प्रवृत्ति का होना न्याय प्राप्त है, यह उस कथन का तात्पर्य है। यानी जो गुरु परंपरा से बात आई है उसका त्याग नहीं करते हुए भी और अधिक उसमें जो कुछ उपदेश आया है उसको भी यहाँ समझना है। वहाँ भेद से और अभेद से ऐसी दो प्रकार की बातें थी कि वहाँ पर समझाने के लिए और कुछ, जो एक तो मूल धारा जो चली आ रही और उसको किसी ने विशेष व्याख्यान किया है, तो दोनों को ही हम समझेंगे। एक के न वो ऐसे ना जो कसा है उसको अनुभव, एक उपदेश के अनुसार जो कषाय है वही अनुभव है, आया ना उत्तर। हाँ कषाय को ही अनुभव कहा है। एक उपदेश के अनुसार अर्थात अप्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, प्रवाह्यमान उपदेश का अपने नाम के साथ चूर्णी सूत्रकार आगे स्वयं कथन करेंगे, इससे उक्त तथ्य जाना जाता है। अपने नाम के साथ यानी प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार ऐसा स्वयं लिखेंगे वो। प्रकृत में जो कषाय है वही अनुभाग है, ऐसा कहने का यह अभिप्राय है कि अनुभाग कषाय से जुदा नहीं है, क्योंकि कषाय से पृथक वह पाया नहीं जाता। कषाय का ही अनुभाग कहलाता है ना, वो तो दो जुदे जुदे तो है ही नहीं है। शंका, अनुभाग कारण है और कषाय परिणाम उसका कार्य है, इस प्रकार इनमें भेद है? समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं है। कार्य में कारण का उपचार करके उन दोनों में अपृथकपना स्वीकार किया गया है, अब इसी अर्थ को दिखलाने के लिए कहते हैं जो हम कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान से सुझे लो पालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देश हो। मयंक भाई।